हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध के नौवें अध्याय का आज पांचवा श्लोक है। तीसरे और चौथे का तात्पर्य नहीं है, इसलिए पांचवा श्लोक बोर्ड पर लिखा है। तीसरा चौथे का हम सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे। तो ये श्लोक आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, आप कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा इसे।
स्वपादमूले पतितं तमर्भकम्
धन्यवाद। तो सबसे पहले तीसरे और चौथे श्लोक का जिसका तात्पर्य नहीं है उसका अनुवाद पढ़ेंगे, कृपया सुनिएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया, हे पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हैं, अतएव तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। वे धीरे धीरे भगवान नरसिंह देव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें सादर प्रणाम किया। अब ये श्लोक है, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की कृपया हमारे साथ सब रहेगा। स्वपाद मूले अपने चरण कमलों पर पतितम गिरा हुआ तम उस प्रहलाद महाराज अर्भकम छोटे से बालक को विलोक्य देखकर देवः नरसिंह देव ने कृपया अपनी अहेतु की कृपा से परिप्लुतः भाव विभोर होकर उत्थाप्य उठाकर तत्शीर्षं उसके सिर पर अदघात अदघात रख दिया। कर अंबुजम अपने कर कमल काल अहि काल रूपी सर्प का जो तुरंत ही मार सकता है। वित्रस्त डरा हुआ धियाम उन सबों के जिनके मन कृत कृत अभ्यम निर्भय बनाता है। अनुवाद हमारे शासक बोलेगा। जब नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपने कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उसके समस्त भक्तों को उनके समस्त भक्तों को सदैव अभय दान करने वाला है। तात्पर्य कृपया सुनेगा। भौतिक जगत की चार आवश्यकताएं हैं, आहार निद्रा भय तथा मैथुन। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय बनाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो सारे भक्त निर्भय हो गए। भक्त के निर्भय होने की आशा है भगवान नरसिंह देव के पवित्र नाम का कीर्तन करना। यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। हम जहां जहां भी जाएं सदैव नरसिंह भगवान का चिंतन करें। इस तरह भगवत भक्त को कोई भय नहीं रह जाएगा।
ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलम् श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येत च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद द्वारा पांचवें श्लोक का द्वारा पढ़ रहा हूं। जब नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपने कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को सदैव अभय दान करने वाला है। तो ये जो विशेष श्लोक है, इस विशेष श्लोक का एक चित्र हमारे मंदिर में भी है नरसिंह देव का, जिन्होंने प्रहलाद महाराज को गोल गोल उठाया हुआ है और उनके सिर पे हाथ रखा हुआ है। तो इसमें बहुत ही विशेष कृपा दिखाई गई है नरसिंह भगवान की, और विशेष रूप से इसमें कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज, जैसे हम सब जानते हैं कि जब नरसिंह भगवान इतने क्रोधित थे कि हर कोई डर रहा था, ब्रह्मा जी इत्यादि कोई भी देवता नरसिंह भगवान के पास नहीं जा पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को बोला कि नरसिंह भगवान बहुत क्रुद्ध हैं आपके पिता पर। तो एक सेंस में ब्रह्मा जी नरसिंह प्रहलाद महाराज को ये बता रहे थे कि प्रहलाद नरसिंह भगवान आपके लिए ही आए हैं। ब्रह्मा जी ये कमेंट कर रहे थे कि ये हमारे मानने से हमारे समझाने से समझेंगे नहीं। और जैसे कि सुना के बता रहे हैं कि जब उनका इतना क्रोध वाला वेश था तो उस क्रोध वाले रूप में भी प्रहलाद महाराज ने कोई संकोच नहीं किया। बिना किसी डर के प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को अप्रोच किया। हालांकि कोई भी देवी देवता, बड़े बड़े देवी देवता लक्ष्मी जी तक डर रहे थे कि प्रहलाद महाराज को कैसे, नरसिंह भगवान को कैसे अप्रोच करें। पर प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान उस उग्र रूप में नहीं नजर आ रहे थे, अपने मास्टर के, अपने मालिक के रूप में नजर आ रहे थे, अपने पिता के रूप में नजर आ रहे थे। और प्रहलाद नरसिंह भगवान ने भी कैसे किया, जैसे ही पिता अपने पुत्र के साथ करता है, उन्हें उठाया चुपचाप, उन्हें अपने गोद पे रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। तो ये दिखाता है इसमें कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति, जैसे इसमें बताया है कि जब नरसिंह भगवान ने देखा प्रहलाद महाराज को, तो नरसिंह भगवान भाव विभोर हो उठे, है ना, जो एक्सटेसिस के सिम्टम्स है वो नरसिंह भगवान में आने लगे, कहा वो क्रोध कर रहे थे और कहा कैसे विपरीत हो गया, है ना। इसके अगले श्लोक में बताएंगे कि जब छठे श्लोक में कि जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ फेरा, तो उनके जितने भी भौतिक कलमश थे खत्म हो गए और प्रहलाद महाराज ने ये प्रहलाद महाराज भाव विभोर उठे। तो कैसे भगवान के दर्शन करके भक्त भाव विभोर होते हैं और भक्तों के दर्शन करके भगवान भाव विभोर होते हैं। और ये जो स्थिति है ये भक्तों के साथ इसकी अलग इक्वेशन है और असुरों के साथ इसकी अलग इक्वेशन चलती है। जब हिरण्यकश्यप ने जब नरसिंह भगवान को देखा तो उसने अपने मास्टर के रूप में नहीं देख पाया, है ना, वो किस रूप में देख रहे थे नरसिंह भगवान को, मृत्यु के रूप में। हालांकि अगर देखिए हिरण्यकश्यप के चरित्र से, तो हिरण्यकश्यप विष्णु से दुश्मनी करते थे। उनके विष्णु से दुश्मनी करने का क्या कारण था, क्योंकि विष्णु ने उनके भाई को मारा था, है ना, उनका एक पुराना एक्सपीरियंस था, है ना, एक जो उनका एक्सपीरियंस रहा था विष्णु के साथ वो बहुत खराब रहा था, और उसके अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे वो ये चेक कर, ये जज कर बैठे थे कि विष्णु हमेशा असुरों के खिलाफ रहते हैं। तो ये असुरों का और असुरिक मेंटेलिटी वाले लोगों का ये स्वभाव रहता है कि अपने दोष ना देखते हुए सामने वाले व्यक्ति में सारे के सारे दोष देखते हैं, और जो उनके अपने कार्य हैं, जो उनकी अपनी एक्टिविटीज हैं, किस कारण से उनको ये कर्म उठाने पड़े हैं, उनके क्या पुराने पाप कर्म थे, उनकी क्या पहले पास्ट एक्सपीरियंस थे, वो इसे नहीं देख पाते। और इस भयभीत अवस्था में वो क्या करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो किसको जन्म देता है, और भय को जन्म देता है ना। फियर लीड्स टू मोर फियर, है ना। तो जो भय है, अगर भय के कारण अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उससे क्या होता है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर लेता है अपने जीवन में जिससे उसके जीवन का भय और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भय का कारण क्या है जीवन में, पाप कर्म। पाप कर्मों के कारण हमें अपने जीवन में भय, भय के लिए जो मोमेंट्स है हमारे जीवन में आते हैं, समय आता है, ये पाप कर्मों के कारण आता है। हमारे कुछ विगत कर्म, पुराने कर्म ऐसे थे जिसके कारण अभी हमें कुछ एक्टिविटीज, अभी हमें कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है जो हमें देखने में लग रहा है कि ठीक है, जो अगर हम जज करें तो उसको ठीक नहीं है, पर इसका जो कारण है वो हमारे अपने पाप कर्म है। तो जो सिंपल लाइफ है पाप कर्म, जब हम पाप कर्म से बचने की कोशिश करते हैं, पाप कर्म से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे बता रहे ना, आहार निद्रा भय मैथुन, प्रभुपाद ने बताया इस भौतिक संसार के हर व्यक्ति का यही कारण है। और इस भय से, इस डिफेंडिंग से कोई मुक्त तभी हो सकता है जब प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावना भावित हो जाए। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, डिफेंडिंग, देखिए ईटिंग स्लीपिंग वेटिंग डिफेंडिंग, इसमें आहार निद्रा और मैथुन इसको छोड़ना इतना कठिन नहीं है, हालांकि कठिन है, पर डिफेंडिंग को छोड़ना है ना, अपने हमारे प्रति को अगर आघात हो रहा हो उसके प्रति रिवोल्ट ना करना, उसके प्रति प्रोटेस्ट ना करना, इसको ना कर पाना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। और जो भयभीत व्यक्ति होता है वो कुछ सिम्टम्स प्रकट करता है अपने ऐसे जो दिखा देता है कि हाँ ये व्यक्ति सत्य भयभीत है और उसके पुराने पाप कर्म है जो इसे समझ नहीं पा रहा। जैसा कि जो भयभीत व्यक्ति है वो हमेशा कुछ चीजों का सहारा लेता है दूसरों को ब्लेम करने का, क्योंकि वो ये नहीं मान सकता कि उसके अंदर कोई गलती है, तो अपनी गलती को कैसे जानता है, दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों को क्रिटिसाइज करके, डर लगता है उसको मानने में कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है, और जब वही फॉल्ट को सामने वाले व्यक्ति में देखता है तो कांपने लगता है, उसको डर लगता है कि ये कैसे हो गया। और क्या कि जब सामने वाला व्यक्ति ग्रो करता है ना, आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। अगर वो सामने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देख भी ले तो इतना नहीं देख सकता कि उससे आगे बढ़ता है, ठीक है सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई नया नया आया भक्ति में, उसकी मदद की, भक्ति में आगे बढ़ गया, सहन हो गया, बर्दाश्त कर लिया, पर इतना आगे बढ़ गया कि उससे आगे निकल गया, ये बर्दाश्त नहीं होता। तो व्यक्ति क्या करता है, उसको दबा के रखने की कोशिश करता है अपने भय के कारण, ताकि जो उसकी पोजीशन है, जो उसका स्टेटस है समाज में, वो खत्म ना हो जाए। सुशीला हरिदास ठाकुर की कथा में हम देखते हैं किस प्रकार के रामचंद्र खान, अगर रामचंद्र खान की क्वालिफिकेशन देखी जाए तो बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति था रामचंद्र खान, वेरी क्वालिफाइड, बहुत सुंदर था, बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत फेमस था, पर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम का कारण क्या था? हरे कृष्णा, सोने का समय नहीं है, खड़े हो जाइए गणिता के। उसकी लाइफ में सोने का क्या देख लीजिए, उसकी लाइफ में, उसके जीवन में इस भय का कारण क्या था रामचंद्र खान के, कि वो देख रहा था कि हरिदास ठाकुर की जो ख्याति है उससे ज्यादा बढ़ रही थी। हरिदास ठाकुर की लोग पूजा करते थे, हरिदास ठाकुर की लोग भक्ति करते थे, चाहे वो मुसलमान परिवार के हो, हिंदू परिवार के, और किसी धर्म की क्यों ना हो, हर कोई हरिदास ठाकुर के पास जाता था और उनकी भक्ति करता था। तो रामचंद्र खान से अपने से कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा है ये देख नहीं पाया, तो ये फियर उसके अंदर था, और इस फियर को खत्म करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? डिफेंड करता है ना, ब्लेम करता है, क्रिटिसाइज करता है। रामचंद्र खान ने भी यही तरीका अपनाया। किसी भक्त को अगर डिफेंड करना तो तरीका क्या है? उसके चरित्र पर, उसके कैरेक्टर पर सीधा धब्बा लगाओ, है ना। और साधुओं के जीवन में स्त्री या धन, तो रामचंद्र खान ने भी यही किया। एक वैश्य को भेजा हरिदास ठाकुर के पास ताकि उसका चरित्र खराब हो जाए, ये घोषित हो जाए कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये अच्छा भक्त नहीं है, है ना, ये जिसे आप लोग भगवान मान रहे हैं, जिसकी पूजा मान कर रहे हैं, इसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के इतने विशेष भक्त थे कि उनकी ख्याति भी बहुत बढ़ रही थी, तो गोपाल चक्र से बर्दाश्त नहीं हुई। गोपाल चक्र ने क्या किया? दुर्गा पूजा का सारा सामान घर के बाहर रख दिया, और जब शिवाज पंडित सुबह सुबह घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा दुर्गा पूजा का सारा पैतरंगिया बाहर है, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, है ना, देखो आप तो मुझे भक्त कहते हो, मैं दुर्गा का भक्त हूं, है ना, आप मुझे क्या समझते हो। तो जब ये स्थिति देखी शिवाज पंडित की, तो किसने माना नहीं कि शिवाज पंडित का इसमें दोष है। सबको पता लग गया कि गोपाल चावल ये जो व्यक्ति है इसके अंदर बहुत द्वेष है, और अपने द्वेष के कारण इसने कार्य किया है। तो एक फियरफुल व्यक्ति की ये टेंडेंसी यही होती है कि वो बहुत भयभीत रहता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे पे सब कुछ डालता है, ब्लेम करता है, क्रिटिसाइज करता है। एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट बनाया जाता है ना, अगर हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, तीन उंगलियां हमारी तरफ है ना, और एक उंगली भगवान की तरफ है ना। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो अपने आप को ब्लेम भी करते हैं, भगवान को ब्लेम भी करते हैं कि आप तो कम से कम समझदार है, आप तो देख सकते हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा क्या? हम भगवान को ब्लेम करते हैं। तो जो फियरलेस डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो हर चीज में भगवान का अरेंजमेंट देख पाते हैं, वो कभी इन चीजों में नहीं फंसते किसी को ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज पे इतने अत्याचार हुए, पर किसी अत्याचार के बाद प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बोला कि भगवान ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये क्या हालत बना दिया आपने मेरी, है ना। आपने भगवद गीता में बोला मां शुचः डरो मत, है ना, निर्भीक होकर भक्ति करो, है ना, मैं तो कह रहा हूं मेरे जीवन में कितने दुख आ रहे हैं, आपने बोला मेरे भक्तों के जीवन में जो नहीं होता मैं उन्हें देता हूं, आप मुझे क्या दे रहे हो दुख। प्रहलाद महाराज ने कंप्लेंट नहीं, है ना, ये कोई किसी पे डरा नहीं, उन्होंने ये देखा कि ये जो मेरे जीवन में मैं फेस कर रहा हूं, इसका जो सारा क्रेडिट सारा श्रेय मेरे ऊपर जाता है, हमारी एक्टिविटीज के कारण, पुरानी एक्टिविटीज के कारण हमें इस लाइफ में कुछ चीजें फेस करनी पड़ती है। जैसे अम्बरीश महाराज को जब श्राप दिया दुर्वासा मुनि ने, तो तुरंत एक असुर प्रकट हो गया, तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया? भागना शुरू कर दिया? नहीं, इसे कृष्ण का अरेंजमेंट देखा और चुपचाप उसे बर्दाश्त करने के लिए लुट गए, और क्या रिजल्ट क्या निकला इसमें? कृष्ण प्रोटेक्टेड, भगवान ने उसकी रक्षा की। महाराज चित्रकेतु जब उन्हें पार्वती माता ने श्राप दिया, किसने श्राप दिया था? पार्वती माता ने, किसी भौतिक संसार के आम व्यक्ति ने श्राप दिया था ना, चलते फिरते किसने श्राप दे दिया ना, तुम्हें असुर योनि में जाना पड़ेगा, तो हम सोचेंगे इसकी श्राप की क्या वैल्यू है ना। चित्रकेतु महाराज को पता था कि पार्वती ने श्राप दिया है, और पार्वती के अंदर इतनी शक्ति है कि श्राप फुलफिल होगा, मुझे असुर योनि में जाना पड़ेगा, पर चित्रकेतु ने प्रोटेस्ट नहीं किया, इसे कृष्ण का अरेंजमेंट समझा और अपने कर्म समझे, डिफेंड करने का नहीं सोचा। जब इंद्र के साथ युद्ध भी कर रहे थे तो इंद्र बहुत डरा हुआ था, है ना, इंद्र का जो पहले उसने गदा फेंकी थी वो निष्फल हो गई थी, अब वो थंडरबोल्ट फेंकने में अपना प्रहार करने में घबरा रहा था, तो चित्रकेतु ने क्या कहा, आप डरो मत, ये भगवान ने दिया है, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये कभी भी फेल नहीं होगा, इसे आप यूज करो, इस्तेमाल करो। तो ये डिपेंड करना, ये भक्तों का चिंतन, ये डिपेंड करना एक ऐसे व्यक्ति का चिंतन है जो बहुत भयभीत है, भय के कारण व्यक्ति डिपेंड करता है, घबराता है। श्रीमद भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु को शत्रु का शत्रु बनता है, वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विकट दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवातम कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, ये तो भगवत कृपा से मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। तो ये भक्तों की चेतना रहती है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल भी आ रहा है तो वो रोने नहीं लग जाते, वो ये देखते हैं कि भगवान की विशेष कृपा है, मेरे कर्मों के अकॉर्डिंगली मुझे बहुत कुछ मिलना था, भगवान ने क्या किया, बहुत कंसेशन में थोड़े से में इसे खत्म कर दिया है। और यही तत्व अनुकंपा श्लोक श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। दरअसल 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी का जो मोह था, है ना, ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुराया था, बछड़ों को चुराया था, तो 13वें अध्याय में उनका मोह खत्म हुआ था, और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुतियां कर रहे हैं, और स्तुतियां करते हुए ब्रह्मा जी ये श्लोक कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जिसका अधिकार है थाम जाने का, बता रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, एनी पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली अवेटिंग योर कॉसलेस मर्सी, कोई भी भक्त जो हमेशा क्या कर रहा है, आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है, टू बी बिस्टर्ड अपॉन हिम, जो उसके ऊपर होगी, एंड हु वेयर्स ऑन सफरिंग द रिजल्टेंट एक्शंस ऑफ हिज पास्ट डिसीज, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या वर्ड्स हैं, एंड हु वेयर्स ऑन सफरिंग, और जो सफर करता रहता है, भुगतता रहता है, द रिजल्टेंट एक्शंस, है ना, जो भी एक्शंस हैं, कौन से एक्शंस, ऑफ हिज पास्ट डिसीज, उसके पुराने जो उसने कर्म किया है, उसके जो रिएक्शन उसको भोगने पड़ते हैं, उसको भोगता रहता है। Offering you respectful obeisances from the core of his heart is surely eligible to become liberated, for it has become his rightful claim. और ये भोगते हुए भी क्या करता है? आपकी भक्ति खत्म नहीं करता, फिर भी अपने हृदय से आपको प्रणाम करता है। इस कारण से क्या होता है? भक्ति करना और भगवत धाम जाना उसका rightful claim बन जाता है, उसका अधिकार बन जाता है। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, this statement of Srimad Bhagavatam should be the guide of all the devotees. ये जो स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवतम की, हर भक्त के जीवन की गाइड होनी चाहिए। भक्तों के जीवन में कभी भी संकट आए, कभी प्रॉब्लम्स आए, तो भक्तों को इस श्लोक को याद रखना चाहिए जो भगवान ने बताया है। तो अगर हम इस बात को समझ जाते हैं, तो जब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ट्रबल्स आते हैं, तो दूसरों के फॉल्ट दिखाने से पहले हम ये देखना पसंद करेंगे कि इसमें मेरा क्या रोल है, इसमें मेरा क्या कार्य था जिसके कारण से मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, ये जो मिजरीज है ना, ये जो दुख मैं अपने जीवन में उठा रहा हूं, जो एक्सपीरियंसेस मुझे जीवन में मिल रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस, जो दुख मेरे जीवन में आ रहे हैं, ये मेरी वजह से है, मैंने आई हैव पर्सनली कॉज्ड इट, मेरी वजह से जीवन में दुख आ रहे हैं, और अब मैं कुछ एक्शन ऐसे कर सकता हूं ताकि जिनकी वजह से ये दुख खत्म हो जाए। क्योंकि हम देखें अगर कृष्ण भावनामृत में, तो बहुत सारे भक्त कृष्ण भावनामृत को ज्वाइन करते हैं, भक्ति में आते हैं, और बहुत सारे भक्त भक्ति छोड़कर चले जाते हैं, किस कारण से? बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। उनके अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि किसी की लोगों के प्रति डिसअपॉइंटमेंट रहती है, किसी की इंस्टीट्यूशन के प्रति डिसअपॉइंटमेंट रहती है ना। अगर आप किससे पूछे कोई भक्ति छोड़ के क्या है, तो उसको कोई मेजर रीजन नहीं होता उसका, ऐसा नहीं कि कोई माया का आक्रमण हुआ था उसपे, है ना, कोई माया देवी स्वयं आई थी, किसने कोई प्रोस्टिट्यूट को भेजा, कोई बड़ा आक्रमण हुआ किसी भक्त पर, तो भक्ति छोड़ के चले गया, नहीं। अगर आप पूछेंगे तो क्या है, वो बताएगा कि किसी भक्त ने उसको हर्ट किया था, है ना, जो उसके लीडर थे उसको समझ नहीं पाए थे, है ना, वो सिर्फ ब्लेम करेगा, है ना, लीडर ठीक नहीं थे, मूवमेंट ठीक नहीं था, इस व्यक्ति की वजह से हुआ है, उस व्यक्ति की वजह से हुआ है ना। उसका इस व्यक्ति उसका अपना क्या रोल है इसमें, वो अपने इस रोल को नहीं देख पाएगा, केवल दूसरों को ब्लेम करने में अपना पूरा जीवन निकाल देगा। श्रीमद् महाभारत में एक कथा आती है एक ओल्ड लेडी की, एक बूढ़ी स्त्री की। उसमें बताया जाता है कि एक बार एक बूढ़ी स्त्री का एक पुत्र था, वो पुत्र शिकार के लिए गया था वन में, और जब वो शिकार के लिए वन में गया तो वन में उसने क्या देखा, वन में एक सांप ने उसे काट लिया, और जब सांप ने उसे काटा तो एक अर्जुन नाम का हंटर था जो वहां पर था, उसने देखा कि सांप ने इस बच्चे को काटा है, इस व्यक्ति को, और सांप बिल में घुस गया है। उसने क्या किया, बिल में धुआं डालकर सांप को बाहर निकाला, पकड़ लिया। अब जब उस स्त्री के, उस बूढ़े बालक को जब घर लेके जाया गया उस स्त्री के पास, उसी समय ये व्यक्ति भी उस सांप को लेकर पहुंचा। अब जब बूढ़ी स्त्री ने देखा कि उसका बच्चा मर गया है तो रोने लगी, है ना। अर्जुन ने क्या बोला, ये अर्जुन कृष्ण वाले कुरुक्षेत्र वाले अर्जुन नहीं, अर्जुन हंटर है, तो अर्जुन ने क्या बोला, आप रोइए मत, आपके पुत्र की जो मृत्यु का कारण है इसे मैं पकड़ के लाया हूं, है ना, आप तुरंत ये चाकू लीजिए और इसका वध कर दीजिए, जब आप इसके खून को देखेंगे जमीन पर टपकते हुए तब आपको संतुष्टि मिल जाएगी, चैन मिलेगा। जब बूढ़ी स्त्री ने यह सोचा तो उसने कहा कि मुझे डाउट है कि मेरे पुत्र को सांप ने मारा है। जब उस स्त्री ने यह बोला तो सांप ने बोलना शुरू किया, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मैं आपके पुत्र को कैसे मार सकता हूं, है ना। तो अर्जुन भी हैरान था कि ये सांप कैसे बोल रहा है, तो बूढ़ी स्त्री ने कहा कि दरअसल ये लगता है सांप कारण नहीं है, ये मृत्यु कारण है, मृत्यु की वजह से ये हुआ है। सांप ने भी बोला, हाँ हाँ मैं तो कारण नहीं हूं, मृत्यु ही कारण है। तो उसने क्या कहा कि चलो ठीक है, मृत्यु को बुलाते हैं। तो मृत्यु को बुलाया गया, है ना, मंत्र पढ़ा, मृत्यु आई, मृत्यु के देव स्वयं आए, उनसे बोला गया कि उस बूढ़ी स्त्री ने पूछा, मेरा बेटा मर गया है, मुझे इतना दुख है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे आपने मारा है क्या। उसने बोला, देखो मैंने तो मारा नहीं, इसे काल, इसका काल आ गया था, इसका समय आ गया था, इसलिए इसकी मृत्यु आई है, मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है, है ना। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, अब स्टोरी में थोड़ा और क्लाइमेक्स आया, ठीक है काल को बुलाते हैं। काल को बुलाया गया, जब काल वहां पर आया तो काल से पूछा, है ना, क्या आपने इस पुत्र व्यक्ति को मारा है। काल ने बोला, नहीं मैंने तो नहीं मारा, दरअसल इसके अपने कर्म थे, इसके अपने कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से इसकी ऐसी मृत्यु आई है। जब ये बूढ़ी स्त्री ने सुना तो उसने हंसना शुरू किया जोर जोर से, बहुत तेज तेज से हंसने लगी। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो मेरा पुत्र था ये एक नंबर का बदमाश व्यक्ति था, दूसरों को दुख देता था, दूसरों के दुख में खुशी महसूस करता था, एकदम सांप की तरह जहरीला था, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ है, इसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। तो अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में, इसका कारण कौन है, हम स्वयं है, तो हमारी लाइफ का जो भी फियर है वो खत्म हो जाएगा। जो भयभीत रहने की हमारी स्थिति है, हर स्थिति में हम भयभीत रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। हमारी लाइफ को पीसफुल रखने का ये एकमात्र तरीका है ये समझना कि ये जो भी एक्टिविटीज है ये मेरे कर्मों के कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम ये समझ जाते हैं कि ये मेरे एक्टिविटीज के कारण है तो हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, कि मेरे कुछ पुराने कर्मों के कारण मुझे ये एक्टिविटीज भोगने के लिए मिली है, अब मैं कुछ ऐसे कर्म करूं ताकि मुझे ये भोगने के लिए ना मिले। आप जो फ्यूचर है भविष्य में मेरे को ये चीजें सफर करनी ना पड़े, इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज को लेकर। तो जब हम इस तथ्य को, इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ का सारा फियर डिसअपीयर हो जाता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो भी कर्म है और जो भी पनिशमेंट हमारी लाइफ में आ रही है, ये कर्म इसलिए नहीं है कि हमें पनिश किया जाए। बेसिकली कर्मास आर मेंट फॉर एनलाइटनिंग अस। कर्म इसलिए बनाए जाते हैं हमारे एनलाइटनमेंट के लिए। किसी व्यक्ति के अगर कर्म खत्म हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके पाप कर्म खत्म हो रहे हैं, तो ये एनलाइटनमेंट खुशी की बात है इसमें। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो हमारा पूरा जीवन किसमें निकल जाएगा, क्वेरल्स में, लड़ाई झगड़ों में, है ना, एक दूसरे को ब्लेम करने में, है ना। हर व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे ने ऐसा किया। अब एक किसी ज्योतिषी के पास जाएं आप, और किसी ज्योतिषी के पास हाथ दिखाएं अगर, तो आपका हाथ देख के एक चीज जरूर बोलेगा, है ना। आजकल हर ज्योतिषी के पास जाएं, आपका हाथ देख के जरूर बोलते हैं कि आप पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं पर आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। और हर कोई ये कहता है हाँ जी बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मैं पूरी दुनिया के बारे में सोचता हूँ, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट बन गया हर किसी को उछलाने का, बस अपने कर्मों के, अपने कर्मों को खुद रिस्पॉन्सिबल ना होकर दूसरों पर डाल देना है ना। मान लीजिए आप किसी कर्म कमरे में बैठे हैं, है ना, तो नेचुरली कभी कभी इन डैमेज के कारण हम लोग एयर पास करते हैं, है ना। आप जब एयर पास करते हैं उस गंदी स्मेल को अगर आप ब्लेम करके बैठे हैं कि ये क्या गंदी स्मेल है, है? पूरे कमरे को दूषित कर दिया है, ऐसे थोड़ी स्मेल होती है ना? अगर आप सिर्फ उस स्मेल को अगर ब्लेम करने बैठे तो इसकी गलती किसकी है? आपकी। उस दूषित स्मेल का कारण यह है कि आपने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जिसका फल स्वरूप भी आपको भोगना पड़ रहा है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसमें। तो ये जो हमारे कर्मार्थ हम अपने लाइफ में उठाते हैं इसका कारण क्या है? हमने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं, कुछ ऐसे कर्म ऐसे किए हैं जिसके फल स्वरूप अब हमें ये रिजल्ट भोगने के लिए मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स हमें क्या करना है? रिस्पॉन्सिबल बनना है, जिम्मेदार बनना है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है ताकि दो चीजें दोबारा रिपीट ना हो सके। पर जब डिवोटीज इस बात को सुनते हैं तो भक्त लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। भक्त लोग किस बात से कंफ्यूज होते हैं कि भाई ठीक है, जो पाप करते हैं, पाप करने वाले लोगों को पता है यार पाप का फल भोगना पड़ता है, पुण्य का फल भोगना पड़ता है ना, पर हम तो भक्ति कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, है ना, हर प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं, फिर हमारी लाइफ में ट्रबल्स क्यों, हमारी लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें क्यों आ रही हैं, है ना, ये प्रश्न हमारे अंदर उठता है। तो इस वाले भक्ति की स्वामी महाराज बता रहे हैं कि क्या हम सेवा करते हैं, ना? ये बहुत अच्छी बुक है द बेगर क्राइंग आउट फॉर मर्सी। महाराज इसमें बता रहे हैं कि ध्यान से सुनेगा, I have noticed that you are always vigorously serving your guru and the lord, है ना? इसमें कन्वर्सेशन है कैसे चल रहा है आपको पूरा कंसेप्ट नहीं बता पाएंगे कि पीछे क्या चल रहा है। तो उसमें बता रहे हैं कि मैंने ये नोटिस किया कि आप बहुत जोर शोर से अपने गुरु और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, बट दिस इज प्राइमरली बिकॉज यू वॉन्ट टू बी नोन एज ए गुड सर्वेंट, पर इसलिए नहीं कि आप सेवा करना चाहते हैं, इस कारण से क्योंकि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने बड़े सेवक हैं। बिकॉज यू वॉन्ट टू बी नोन एज ए गुड सर्वेंट, एज फार एज यू आर कंसर्न यू हैव गॉन एवरीवेयर टू प्रीच ऑन द लॉर्ड्स बिहाफ। जहां तक आपका सवाल है, आप हर कोने कोने में गए भगवान की तरफ से प्रचार करने के लिए। यू हैव इवन ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में भ्रमण किया, डिस्ट्रीब्यूटिंग वंडरफुल बुक्स दैट ग्लोरीफाई द सुप्रीम, है ना, बहुत किताबें बांटी जो भगवान का प्रचार कर रही है, बट इन रियलिटी सच्चाई में ऑल दिस वॉज बिकॉज यू योरसेल्फ वांटेड टू बी व्यूड एज अ मर्सीफुल सेंट, है ना। आप दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मैं कितना कृपालु साधु हूं, है ना, मेरे अंदर कितनी करुणा है सबके प्रति। It's true that you have also met with rich and famous, and we see that you have acquired numerous students. तो ये सच है कि आप बहुत धनवान लोगों से, बहुत famous लोगों से मिले और आपने बहुत सारे शिष्य बनाए। Using God and Guru as your bait, अपनी ढाल क्या बनाई आपने? गुरु को और कृष्ण को अपनी ढाल बनाया अपने शिष्य इकट्ठे करने में। But again, this was all done as an act of self-aggrandizement. In order to expand your own circle of influence, और कारण क्या था इसका? इतने आपने प्रचार के, इतने लोग इकट्ठे किए सिर्फ अपने एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। People are impressed that you have built so many temples. लोग कितने खुश हैं, कितने इंप्रेस्ड हैं आपसे कि आपने इतने बड़े-बड़े मंदिर बनाए, and that you have founded so many spiritual communities, इतनी बड़ी-बड़ी कम्युनिटी बनाई। But actually, all of these activities were just attempts to increase your own empire. ये सारी एक्टिविटीज किसने थी कि आप अपना एम्पायर बना सको, अपना एक महल बना सको। तो दरअसल जो हम सेवा कर रहे होते हैं तभी ये देखना चाहिए कि सेवा किसकी कर रहे हैं हम, गुरु को, कृष्ण को, है ना, सारी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, इन सबका इस्तेमाल किन चीजों में कर रहे होते हैं? अपना प्रचार करने में, अपना एक एम्पायर खड़े करने में, अपनी एक प्रजा बनाने में, इस चीज में सारी चीजें लगाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? सिंपल पाप कर्म, और इसके रिजल्ट के कारण हमें फिर चीजें भोगनी पड़ती हैं, हमारी लाइफ में फिर ट्रबल्स आते हैं, है ना। हर पाप कर्म का जो फल है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये जो फियर है, जो भय है, अगर हम अपनी लाइफ में इसे सच में यूज करना चाहते हैं तो हमें इस फियर को यूज करना चाहिए, इस फियर को यूज करना चाहिए भक्तों को, भक्तों के प्रति अपराध ना करके, अपराधों से बचने में भयभीत होना चाहिए हमें, है ना।
कृष्ण भक्ति हाथ से ना छूट जाए, इसमें भयभीत होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि अगर हमें कुछ भी दान देना पड़े तो देने के लिए तैयार रहना चाहिए, पर भक्ति हाथ से फिसल ना जाए। अगर हमें इस भय को यूज करना है तो यूज करना चाहिए कि भक्तों का संग हमारे साथ से ना छूट जाए, कृष्ण का रिमेम्बरेंस ना छूट जाए। अगर भय को यूज करना है तो ये भय यूज करना, इस जगह इस्तेमाल करना चाहिए कि मृत्यु के समय क्या कृष्ण का स्मरण होगा। भगवान कह रहे हैं अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलयुगम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो क्या हम अपनी लाइफ की प्रिपरेशन इस प्रकार से कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे जो ट्रबल्स आ रहे हैं जीवन में, संघर्ष आ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन इस हिसाब से कर रहे हैं कि एक बड़ा संघर्ष आएगा जीवन में उससे फेस कर पाएंगे हम। मृत्यु से बड़ा संघर्ष और कुछ नहीं है। हमें जीवन में काफी चीजों से आसक्ति है जो छूटती है तो हमें भय लगता है, डर लगता है, पर इस सबसे बड़ा आसक्ति हमें शरीर से है। हम किसी से प्रेम नहीं करते, ना माता पिता से, ना बच्चों से, ना किससे। माता पिता से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि माता पिता को दुख होगा तो हमें उठाना पड़ेगा वो दुख, बस। बच्चे से इसलिए प्रेम करते हैं कि बच्चे को दुख होगा तो मेरे जीवन में दुख आएगा, बस मेरे को संघर्ष उठाना पड़ेगा। यही हमारा प्रेम करता है, बस यही हमारा भय है। हम किससे कोई प्रेम नहीं करते, इस शरीर से प्रेम करते हैं सर। और जब ये शरीर छूटेगा तो कितना फियर होगा। तो रियली अगर फियर को यूज करना है तो इसमें यूज करना चाहिए कि मृत्यु के समय क्या भगवान का स्मरण होगा। अगर हर रात सुबह उठकर ये प्लानिंग करें कि मेरे जीवन का आज आखिरी दिन है ना, आज मुझे कृष्ण भावना में कहना है पूरे जीवन छोड़ दो, बस आज, केवल आज के दिन में सुबह से रात तक कृष्ण भावना भावी करूंगा, किसी गलत चीज का स्मरण नहीं करूंगा, कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, तो उसका लाइफ कैसे होगी, अपने आप पीसफुल हो जाएगी। एक राइटर बताते हैं अपनी बुक में, अगर हम लोग सोचते हैं कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है तो एक ना एक दिन आप सच्चे जरूर होंगे, क्योंकि एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा और आप प्रिपेयर रहते हैं सुबह से। तो रियली अगर हमें अपने फियर को यूज करना है तो इस चीज में यूज करें। तो भक्तों के जीवन में इस संस्था के लिए और कोई भी फियर नहीं है, सिर्फ ये फियर है। प्रॉपर भी ये बताते थे कि इस मूवमेंट को बाहर से कोई फियर नहीं है, इस मूवमेंट का एकमात्र फियर है अंदर से। भक्तों के जीवन में बाहर से कोई फियर नहीं है, एकमात्र फियर है अंदर से। अगर हर भक्त के जीवन का एक लक्ष्य रहे कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना है तो हर कोई आगे बढ़ेगा, पर हर भक्त के जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा कि मैं किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा अपने से, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सब यही रहेंगे मिलके खुशहाल, खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, सब मिलके रहेंगे, पर यहां रहेंगे एक जगह मिलकर रहेगा, यहां पर या आध्यात्मिक जगत में। अगर सबको प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो आध्यात्मिक जगत में मिलकर साथ में रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो यहां पर साथ में रहेंगे, साथ में तो रहना ही है, तो क्यों ना सबको प्रमोट करके आगे बढ़ाकर साथ में आध्यात्मिक जगत में रह जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें कि जो भी व्यक्ति इस स्थिति में रहता है ना, फियरफुल कंडीशन में रहता है, वो कभी भी प्रचार नहीं कर पाता। प्रीचिंग करने के लिए आपको फियरलेस बनना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में आप देखें तो प्रहलाद महाराज कब प्रीचिंग कर रहे हैं, जब कोई फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है। प्रहलाद महाराज की जो गुरु है वो असुर, पिता असुर, दोस्त असुर, हर कोई असुर है ना, हर कोई असुर है। उस स्थिति में प्रहलाद महाराज बिल्कुल फियरलेस होकर प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार करने के लिए भक्त को फियरलेस होना पड़ेगा। अगर हम फियरलेस नहीं है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया, कैसे कितने जोर शोर से प्रचार किया, और अभी भी अगर भक्तिमोहन ठाकुर ने, सिक्स गोस्वामी ने और भी जो करंट आचार्य शास्त्र प्रचार कर रहे हैं, कितना जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं बिना किसी भय के, क्योंकि अगर किसी के अंदर भय है तो प्रचार कैसे करेगा। श्रील प्रभुपाद ने कोई भय नहीं किया है ना, प्रॉपर चाहे तो बड़ा प्रोफेसर बैठा हो, नेता बैठा हो, कोई भी क्यों ना बैठा हो सामने, प्रॉपर सबको बोलते थे कि आप कुत्ते बिल्ली के समान, बिना किसी भय के प्रॉपर प्रचार करते थे। तो अगर हम इतने भयभीत रहेंगे, इतना फियरफुल कंडीशन में रहेंगे तो बस वही रहेंगे है ना, कुएं के मेंढक, उसी के अंदर अंदर नाचते कूदते खेलते रहेंगे, अपना खुशहाल जीवन बनाने की कोशिश करेंगे जो बन नहीं सकता, और प्रचार वहीं का वहीं रहेगा, सब चीजें वही की वही रहेंगी, हमारी चेतना हमारी स्थिति वही की वही रहेगी। तो अगर हमें प्रचार करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर सेवा करनी है, तो इस फियरफुल कंडीशन से बाहर निकलना पड़ेगा, फियरलेस बनना पड़ेगा। और फियरलेस बनने का जिसमें प्रॉपर तक जो तरीका बताया जा रहा है वो है कृष्ण भावना वृत्ति। प्रॉपर बता रहे फियरलेस बनने का तरीका है भगवान के नामों का जप करना, प्रभुपाद स्पेसिफिकली इसमें बता रहे हैं कि नरसिंह भगवान के नाम का जप करना। इसलिए हमारे मंदिर में कोई भी आरती क्यों नहीं होती, हर किसी के आरती में कौन सी आरती होती है? नरसिंह भगवान की, क्योंकि भक्ति में विघ्नों का नाश करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप गौड़ीय वैष्णव, आप नरसिंह भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? तो ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। भक्तिमोहन ठाकुर और भी आचार्य सब नरसिंह भगवान की भक्ति करते थे, और नवदीप भाव तरंग और भी कई पुस्तकों में भक्तिमोहन ठाकुर पूरा मेंशन कर रहे हैं, उसमें नरसिंह भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, नरसिंह कैसे भक्ति करनी है मेंशन कर रहे हैं। तो भक्तों को हमेशा, अगर भक्त को कृष्ण भावना भावित में अगर फियरलेस रहना चाहते हैं, अगर तो फियरलेस रहने का एकमात्र तरीका यह है कृष्ण भावना का जो मूल अंग है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, उससे अपने जीवन में उतारे। जितना ज्यादा हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे सिंसियरली, है ना, उतना ही हम क्या देखेंगे कि हमारे लाइफ में भय कम हो रहा है। भय का जीवन में एक ही कारण होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी टेंजिबल वस्तु नहीं होती जिसको हम पकड़ सके। अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपका एक पैर आप पहले ही हवा में है, दूसरा भी कोई उठाने के लिए बोले तो आपको भय लगेगा ना। पर अगर आपका एक पैर जमीन पर है, आपको दूसरा उठाना, तो आपको इतना भय नहीं होगा। तो अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम भक्ति में आ गए हैं, भक्ति को पकड़ा नहीं, भौतिक जीवन को छोड़ा नहीं। तो वो जो स्थिति है वो अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जो भय को उत्पन्न करने वाली है। तो हमें क्या है, कृष्ण भावना में जो पॉजिटिव चीज है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें इसे पकड़ना है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होगी, तो हमारे से अगर छोटी मोटी चीजें इधर उधर खिसक गई चले गई तो हमें कुछ भय नहीं लगेगा उसमें। पर क्योंकि हमारे नाम के प्रति रुचि नहीं है, इससे हर स्थिति में हमें भय लगता है, और यही भय हमारी नास्तिकता का कारण है। हम कह सकते हैं कि हम भक्त हैं, पर एक फियरफुल व्यक्ति कभी भक्त नहीं होता। अगर कोई भयभीत है तो इसका मतलब वो भक्त नहीं है, वो नास्तिक है, क्योंकि उसको लगता है कि कृष्ण जैसी कोई व्यक्ति नहीं है। और अगर कृष्ण एक व्यक्ति है भी, तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके। ये भय, ये डर हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो हमें क्या करना है, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और ये प्रार्थना करनी है कि हर स्थिति में अपने आप को, हर स्थिति में हम ये देखें कि हमारी लाइफ में कृष्ण का कितना बड़ा रोल है, हमारी लाइफ में भक्तों का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका लाइफ में। अगर हमारी कृष्ण कॉन्शियस एग्जिस्ट कर रही है तो भक्तों की वजह से कर रही है। एक बार, क्योंकि हर किसी के जीवन में फियरफुल सिचुएशंस आती हैं, एक बार मैं भी बहुत अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के, हालांकि मैं फियरफुल ही रहता हूँ हमेशा, पर एक बार बहुत ज्यादा फियरफुल था मैं अपनी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर। तो मैं इस तरह से रुक्मिणी कृष्ण जी के पास गया, मैंने पूछा कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। और प्रभु जी ने एक ऐसी बात बोली जो मैं कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है उसको याद करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होती है। प्रभु जी ने बताया कि अगर हमारी लाइफ में बड़ा सा बड़ा कभी भय आए, है ना, अगर हमें ऐसा लगता है कि जो कभी सपोर्ट है हमारी सबसे बड़ी, वो सपोर्ट हमारे छिन गई है, तो आप ये याद रखिए कि कृष्ण किसी न किसी एक व्यक्ति को ऐसा भेज देंगे जो आपकी मदद करेगा। किसी ना किसी व्यक्ति को भेजेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई ना कोई चीज ऐसी भेजेंगे जिससे आपकी कृष्ण कॉन्शियस सेफ रहेगी, बशर्ते आप उसको सेफ रखना चाहें। अगर आप हमें सेफ रखना चाहें तो उसका कोई सलूशन नहीं है। पर कृष्ण हमेशा, देखिए हमारे, अगर हम अपना डिवोशन देखें तो वी आर नॉट लाइक प्रहलाद महाराज, कि स्वयं नरसिंह भगवान जैसे हमें कुछ हुआ, है ना, घर में पति पत्नी की लड़ाई हुई, पत्नी भक्त है पति भक्त नहीं है, तो पत्नी ने नरसिंह देव को बुलाया और दीवार में से नरसिंह भगवान खंभा पर फाड़ कर पकड़ हुए और उसकी रक्षा करने के लिए। अभी ऐसा नहीं होने वाला है ना, तो इसको दिमाग बिठा लीजिए अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं होगा। पर हमें क्या है, कृष्ण कोई ना कोई माध्यम ऐसा भेज देंगे जो हमारी रक्षा करेगा। तो इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कृष्ण की बातों पर, क्योंकि भगवान हर छोटे छोटे इंटरवल से गीता में ये बोल रहे हैं कि मैं रक्षा करूंगा, जो आपके पास नहीं है मैं दूंगा, आप घबराओ मत, डोंट फियर, है ना। तो फियरफुलनेस नास्तिकता का लक्षण है, हमें चाहिए कि, हालांकि इसे निकालना इतना आसान नहीं है, जैसे डिफेंडिंग सबसे मुश्किल कार्य है इसको छोड़ना, है ना। हम लोग डिफेंड करने के लिए इतनी आदत पड़ गई डिफेंड करने की कि हमेशा तैयार रहना डिफेंड करने के लिए। तो पर फिर भी हमें इसके लिए संघर्ष करना है, इसके लिए प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना से प्रार्थना कर सकते हैं, शास्त्रों शास्त्र पढ़ सकते हैं, ताकि इन सिचुएशंस में हम सही चीज का सहारा ले सकें, गलत चीज का नहीं। मैं यहीं पर ही विराम देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, प्रेमानंद।